हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कल हमने भगवत वाणी श्रीमद् भगवत गीता के 14वें अध्याय से प्रकृति के 3 गुणों का प्रभाव जीवात्मा जो निर्लेप है, शुद्ध है, पवित्र है, सच्चिदानंद है, जब शरीर कर्मों के कारण लेने के लिए बाध्य हो जाता है, पाबंद हो जाता है, तो शरीर जिन चीजों से बना हुआ है वो प्रकृति अपने अंदर 3 गुणों को रखती है, जिनसे उन 3 गुणों से जीव का स्वभाव बनता है और जीव उस स्वभाव के प्रभाव से व्यवहार करता है, विचार करता है, आदान प्रदान करता है, कार्य करता है और सारा ही जीव मानव का जो उठना बैठना चलना फिरना करना सब इन 3 गुणों से गवर्न होता है अथवा ये 3 गुण उनका संचालन करते हैं। प्रकृति के 3 गुण हम सब का संचालन करते हैं और कल हमने 3 गुणों का कैसे जब जीव उसके संपर्क में आता है तो उसका प्रभाव क्या होता है, कल 3 श्लोकों का हमने पाठ किया था। सतोगुण निर्मल है, कोई मल नहीं है, पवित्र है, शुद्ध है और सतोगुण में सुख की और ज्ञान की अनुभूति होती है। रजोगुण आसक्ति का कारण है और असंख्य इच्छाओं के कारण रजोगुण में सदा ही कर्म में लगा रहता व्यक्ति है, काम से बंधा हुआ होता है, काम करता रहता है क्योंकि इच्छाएं उसकी अनगिनत हैं और कभी पूरे होने वाली इच्छाएं नहीं हैं और आसक्ति उसकी शरीर में, घर में, गृहस्थी में, दुकान में, मकान में, सब जगह अपने मान में, प्रतिष्ठा में, इन सब में आसक्ति अधिक होती है। तमोगुण का व्यक्ति अज्ञानता के कारण न तो निर्मल होता है, वो मल से लदा हुआ होता है। ज्ञान के कारण सतोगुण का व्यक्ति पाप कर्म से बचता है, तमोगुण का व्यक्ति अज्ञान कारण के कारण सब पाप कर्मों में लिप्त रहता है। उसका पागल जैसा व्यवहार होता है, प्रमादी होता है, आलसी होता है और नशे में रहता है, सोता रहता है, ऐसे तमोगुण का व्यक्ति, ये तमोगुण का प्रभाव आलस और निद्रा के कारण सबके ऊपर प्रभाव डालता है। आज हम यहां से आगे ये 9वां श्लोक पढ़ते हैं। सत्वम सुखे संजायते, जब व्यक्ति सतोगुण के प्रभाव में होता है तो वो अपने आप को सुखी मानता है। मेरा ये दर्शन का बैठ के कुछ लिखता है, कविता लिखता है, कुछ उपन्यास लिखता है, कुछ वैज्ञानिक आविष्कार करता है अथवा कहीं पढ़ाता है, ये सतोगुण के व्यक्ति संतुष्ट रहते हैं, सुखी रहते हैं और उस सुख से अपने आप को उसी काम में लगा के रखते हैं। रजह कर्मणि भारत, और जो अर्जुन भरतवंशी रजोगुण के प्रभाव में होते हैं वो कार्यरत रहते हैं, हमेशा भागा दौड़ी में रहते हैं, जितना है उससे संतुष्ट नहीं होते हैं और न सुखी होते हैं, न संतुष्ट होते हैं, न तृप्त होते हैं, सदा ही अपने कार्य को बढ़ाने में लगे होते हैं। और ज्यादा बढ़ाया जाए, और ज्यादा बढ़ाया जाए, और ज्यादा सुख न, और ज्यादा सुख नहीं, और ज्यादा भोग किया जाए। तो सतोगुण सुख से बंधा हुआ होता है, रजोगुण कर्म से बंधा हुआ होता है। भागा दौड़ी में ज्ञानम आवर्त्य तू तमः, और जो तमोगुण का है उसका ज्ञान ढका हुआ है, ज्ञान के ऊपर पर्दा आ गया है, तो प्रमादे वो प्रमाद में रहता है। प्रमाद का मतलब पागलपन, अज्ञानी जैसा मूर्ख की तरह रहता है, हमेशा गंदगी में पड़ा रहता है, न खाने का नेम होता है, न सोने का नेम होता है, न उठने का नेम होता है, क्योंकि अज्ञानी है, बिल्कुल मूर्ख जैसा उसका व्यवहार होता है। तो सतोगुण सुखी, इसका उदाहरण दार्शनिक, कविता रचने वाले, बड़े बड़े विद्या पढ़ाने वाले प्रोफेसर, पंडित लोग, ये सब सुखी रहते हैं, अपने आप में संतुष्ट रहते हैं, इनको ज़्यादा भागा दौड़ी नहीं है। जैसे आप देखें कोई पढ़ाने वाले प्रोफेसर किसी कॉलेज में है तो अपने उसी काम में, उसी खोज में, उसी में संतुष्ट रहता है। वो तो रजोगुणी व्यापारी है, उसको तो बढ़ाना है और बढ़ाना है और बढ़ाना है और बढ़ाना है, मानो के मकान बनाना है तो इसको और ज़्यादा अच्छा कितना बनाना है, जैसे सारी उम्र उसमें रहना है। अरे भाई, काम निकालना है संसार में सुख तो कम से कम लेके देख लेना चाहिए थोड़ा बहुत, वो तो उसके बाद सुख भी नहीं है, और तमोगुणी तो आलसी है। अब इसके बाद ये जो श्लोक आ रहे हैं कि ये तीन गुण आपस में हमेशा एक दूसरे से आगे बढ़ने का, एक दो को दबा के एक आगे बढ़ता है, इन तीन गुणों का प्रभाव ऐसे हर समय हमारे ऊपर ऐसे आता है जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं। तो कहते हैं रजस तमस चाभिभूय, कभी कभी रजस और तमस दोनों को दबाकर सतोगुण बढ़ जाता है। सत्वम भवति भारत, रजो और तमो दोनों को कम करके और सतोगुण कभी बढ़ जाता है। आदमी की प्रवृत्ति ऐसी होती है, अरे भाई आज नहीं काम पे जाना है, आज मुझे सत्संग में जाना है, आज मैं घर में बैठूंगा सत्संग में बैठूंगा, ऐसे विचार आता है, और आज अब क्या करना है, सोने का बहुत सो लिया, आज नहीं सोते हैं, आज सवेले उठते हैं, सवेले सवेले चले जाएंगे, आज सत्संग में जाके बैठ जाएंगे, ये सतोगुण प्रभावी हो गया, रजोगुण को भी रोक दिया और तमोगुण को भी दबा दिया। और कभी कभी रजसत्वम तमश्च एव कज, रजो और सतो को दबा के तमोगुण बढ़ जाता है, आज कहीं नहीं जाना, आज आराम करते हैं, पड़े रहते हैं, सोए रहते हैं, उठने की इच्छा नहीं होती है, तो तमोगुण बढ़ गया, और आलसी हो गया, आज बस आज मन नहीं कर रहा है, आज कहीं जाना नहीं है, आज काम नहीं करना है, आज काम नहीं करना है, आज मंदिर नहीं जाना है, आज भक्ति नहीं करनी है, आज सत्संग में नहीं जाना है, ये तमोगुण हो गया। तमः सत्वम रजस तथा, और कभी कभी तमो और सतो दोनों गुण को दबा के रजोगुण बढ़ जाता है, नींद भी नहीं करनी है, मंदिर में भी नहीं जाना है, बस कमाने जाना है, नींद भी, जैसे सुबह सुबह उठ के 4 बजे कौन लोग काम पे जाते हैं ना, आधी रात की 2-3 बजे की फ्लाइट पकड़नी होती है तो नींद तो खराब कर देते हैं और अपने साधन सारे छोड़ देते हैं, लेकिन काम करना है इसलिए जा रहे हैं। तो रजोगुण कभी, तो ये तीन गुण कभी हरेक के ऊपर, कभी एक का प्रभाव बढ़ता है, कभी दूसरे का, कभी तीसरे का। अब करना क्या चाहिए, शिक्षा ये है कि अधिक से अधिक सतोगुण में रहना चाहिए। रजो और तमोगुण नीचे स्तर के गुण हैं, उनको जितना दबा के कम किया जाए उतना अच्छा है। सतोगुण में जितना रहा जाए उतना सुख की अनुभूति होती, ज्ञान की अनुभूति होगी, पाप से बचने का प्रवृत्ति बनेगी, तो प्रायः सतोगुण में रहने का प्रयास करना चाहिए। दूसरों को कैसे कम करना चाहिए, एक कहानी कथा बताते हैं, बहुत अच्छा बगीचा आम का था, किसी व्यक्ति का भले मानस का, वो रोज देखता है कि कुछ आम रोज कोई तोड़ के जाता है, रात को कोई आम तोड़ के जा रहा है, तो एक दिन रात को बैठ गया, देखा 4 आदमी आम तोड़ने को आए, ये अकेला था, चार से लड़ तो नहीं सकता था। देखा, पहचान लिया गांव के हैं, एक ब्राह्मण देवता है, एक तो क्षत्रिय है जो यहाँ का मुखिया है उसका मानो बेटा है, एक तो व्यापारी का बेटा है और एक तो काम करने वाला मजदूर है। ये चारों इकट्ठे होके आए हैं। ब्राह्मण मानो कह रहा है कि ऊपर से यहाँ से उतार लो क्षत्रिय, उसको सबको संभाल के बैठ रहा है कि कोई इसको इधर उधर वो करे ना। और वैश्य कहता है इसमें से इतना पैसा मिल जाएगा, इतना इतना भाग करके ले लेंगे। और चौथे को कहता है तुम उठा के चलो, अपन वापस में बांटेंगे, हर एक का जो काम है वो कर रहा है। इसने देख तो लिया, आया सामने सबको, वाह अरे भाई आप लोग इन आधी रात को इतने सारे संकट में ये आम पेड़ से उतार रहे हैं, समस्या क्या है? तो सबने देखा कि ये तो मालिक आ गया, तो आम उधर ही पड़े हैं। अब इसने कहा कि इनसे लड़ना झगड़ना तो है नहीं, बुद्धिमानी क्या की? ब्राह्मण देवता को हाथ जोड़ के कहा, महाराज आपके घर हम प्रसाद में पहुंचा जाते, आम आपको हमको कहने की भी जरूरत नहीं थी, आप यहाँ आके इतनी रात को क्यों परेशान हो रहे हो? आपको चाहिए आप ले जाओ, ले जाओ के हम आपके घर पहुंचा देंगे, आप जाइए हम आपके घर पहुंचा देंगे। महाराज बैठिए। क्षत्रियो का महाराज आपको तो हमारी रक्षा करनी चाहिए, दूसरा कोई चोर आए उसके रोकना चाहिए, आपको तो टैक्स के रूप में हमको वैसे भी देना है, आप राजा हैं आपको तो हमको देना ही पड़ेगा, हम आपको दे के जाएंगे घर में, आपको आने की किसने का तकलीफ क्यों दी, हम आपको पहुंचा जाएंगे, आप चिंता क्यों कर रहे हो? अब दोनों को तो शांत कर दिया। फिर वैश को कहने लगे, सेठ जी आप लोग उधार देते हैं, हम सारा बीज लाते हैं, इतना सारा खेती करते हैं, आप हमको कहते हैं हमको पहुंचा जाते, पैसे तो आपके हमारे पास पहले ही उधार में पड़े हैं, हम आपको देते रहते हैं, आपको तकलीफ करने की क्या जरूरत है? अब तीन को शांत किया। फिर चौथे को कहता है, तुम्हारे को काम के लिए बुलाते हैं तब निकम्मे आते नहीं हो और रात को चोरी करने आते हो, बदमाश यहां से भागो। तो उसको भगाया, तीन को तो शांत किया, चौथे को भगाया। अब जो वो चला गया, बाकी बचे तीन। ब्राह्मण को कहते, महाराज आप क्यों चिंता करते हो, आपको तो घर पहुंचा दूंगा। अरे क्षत्रिय महाराज आपका टैक्स में आ जाएगा, लेकिन सेठ जी आप हमारे को एक पैसा मुफ्त में देते हो क्या? जो चीज लिखते हो उसका तो फिर आप ऊपर ब्याज भी लगाते हो और रात को आके चोरी करते हो, शर्म नहीं आती है सेठ? ये सेठ का काम है, निकलो। उसको भगा दिया। ये तमोगुण को गया, पहला तमो गया अब रजो गया। फिर ब्राह्मण को कहते, महाराज आप तो कि ये सब आपके घर पहुंचा देंगे, आप चिंता मत करो। लेकिन क्षत्रिय को कहा, महाराज आप रक्षक हो, अगर आप ही भक्षक बन के हमारी चोरी करोगे तो हम किसके पास जाएंगे शिकायत करने के लिए? आपको लज्जा नहीं आती है ऐसा काम करते हो रात को? जिसकी रक्षा करनी चाहिए उसकी चोरी करते हो, निकलो यहाँ से। वो भी बेचारा चला गया, बाकी अकेला ब्राह्मण बच गया। उसको कहते, महाराज आपको प्रणाम है, आप अगर शिक्षा दे के लोगों को सुधारने के लिए है या चोरी करने की और दूसरों को चोरी में साथ में लगाने के लिए, आप अगर धर्म की शिक्षा देने का उल्टा काम करेंगे तो महाराज कौन धर्म सिखाएगा, निकलो यहाँ से। अब चारों को एक एक करके निकाल दिया और अपनी सुरक्षा से सामान को बचा लिया। तो ऐसे हमारे जीवन में जब तमोगुण आता है, आलस आता है, सोने की इच्छा होती है, तब सोचना चाहिए कि मिलेगा क्या इससे, क्यों पड़े रहे आलस में? ये तो तमोगुण है, जितनी आवश्यकता है शरीर को आराम की उतना देना है, बेकार में आलसी की तरह पड़ा रहना अच्छा नहीं है। तो दिमाग में ये समझ में आ जाए कि ये तमोगुण है, इसको छोड़ना चाहिए, उठना चाहिए एकदम तमोगुण से उठ के। और रजोगुण, रजोगुण में होता है लोभ, तमोगुण में होता है आलस और रजोगुण में होता है लोभ। लोभ कैसे कम होगा? कहते हैं लोभ कम करना है तो उदारता से दान देना चाहिए, तो लोभ कम हो जाएगा। दान देना लोभ की निवृत्ति है। अब आज देखो कितनी आवश्यकता है पूरे देश को, चारों ओर से बेचारे लोग रोज कमाने वाले जैसे मजदूर हैं बेचारे, उनका रोज की नहीं आवत है, तो कितने कैसे लोग हैं जिनके पास कमाया है वो दे रहे हैं उदारता से दान में। तो ये दान देने से लोभ की प्रवृत्ति कम होती है। तो ज्यादा सुबह से शाम तक भागे तब ये सोचे थोड़ी देर के लिए खाऊंगा तो दो रोटी थी, और एक कटोरी दाल की। ये पागा पागलपन की तरह सुबह से शाम तक ऐसे न सुख है न शांति है न परिवार के साथ समय दे सकता हूं, तो ऐसे क्यों कर रहा हूं? अपना टाइम निर्धारित क्यों नहीं कर लेता? ये टाइम फिक्स पे जाना है, ये टाइम पे आना है, मेरे भाग में जो लिखा है वो आएगा, मेरी किस्मत कोई दूसरा लेके जाने वाला नहीं है, जो मैंने मेहनत करनी है उतनी करनी चाहिए। वैसे भी 24 घंटे दिन रात के हैं, उसमें से 8 घंटे हमारे अपने लिए हैं, जिसको जिससे हमको सोना चाहिए, नहाना चाहिए, खाना चाहिए, कपड़े बदलने चाहिए, ये 8 घंटे हमारे हैं। इससे हम अपने शरीर का देखभाल करें। 8 घंटे हमारे कमाने के लिए हैं, 8 घंटे के अंतर्गत अपना आपको जितना काम करना है उतना काम कर लो, उससे ज्यादा 8 घंटे असल में आपके अपने हैं, वो शरीर के 8 घंटे, वो 8 घंटे शरीर को परिवार को चलाने के लिए, 8 घंटे आपके अपने हैं, वो असल में आपके चिंतन करने के लिए, आपके ध्यान करने के लिए, आपके भगवान का स्मरण करने के लिए, आपके स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए है। वो 8 घंटे आपके कहाँ जाते हैं, इसको पहले ढूंढ के देखो। देखो, सोने का कार्य आपको 7-8 घंटे से ज्यादा नहीं होता, कितना भी पड़ा रहो इससे ज्यादा नींद नहीं आएगी। नहाना धोना खाना पीना 1-1.5 घंटे का काम है दिन में। दुकान पे जाना है, काम करना है, वो 8 घंटे ज्यादा से ज्यादा, आधा घंटा इधर उधर जाने आने में लगे, इससे ज्यादा नहीं। बाकी टाइम कहाँ जाता है? बाकी समय जो असल में, जैसे हम अब आजकल लॉकडाउन के कारण हमारे को टाइम बचा हुआ है तो हम बैठे हैं, नहीं तो इस टाइम सत्संग में बैठने वाले कहाँ से मिलते हैं? नहीं मिलते बेचारे। तो हमको सोचना चाहिए कि ये बाकी जो हमारे अपने हित का जो टाइम है, जो आत्मा का टाइम है असल में, 2, 18, 16 घंटे तो आपको शरीर के लिए दे दिए, शरीर और शरीर के संबंधी परिवार उनके पालन के लिए दे, नेम बना लिया। 8 घंटे आपके आत्मा के और शरीर दोनों को स्वस्थ रखने के लिए और उसके उद्धार के लिए चिंतन करने के लिए वो कौन खा जाता है, उसको अच्छी तरह से कभी देखना चाहिए। ये इतना प्रभावित हम हो जाते हैं, ये इतना मशीनी दौर के अंदर, आपको बताएं समय हमारा कैसे चला जाता है, हम सब इसका अनुभव करके देखते हैं। ये मोबाइल ऐसा है, उसको खोल के हमने एक चीज देखना शुरू की ना, तो एक आधा घंटा नहीं, 1 घंटा निकल जाता है, पता नहीं लगता। 1 घंटा निकल जाता है चीजें देखते देखते, पता नहीं लगता है। और हम प्रैक्टिकली देख रहे हैं, माला लेके जपने जपते हैं तो 15 मिनट के बाद लगता है बहुत समय हो गया, और फोन को देखते हैं तो 1 घंटे के बाद भी पता लगता है अभी तो और कुछ देखना चाहिए। इसका मतलब हमारे दिमाग रजोगुण की तरफ इतना ज्यादा प्रभावित है कि सात्विक काम में तो भार लगता है और राजसिक काम में तो अच्छा लगने लगता है। क्यों? रजोगुण विस्तारित है, विस्तार करने का है ये दिमाग में रजोगुण का। वैसे रजोगुण ही तो है, इसलिए हमने घर गृहस्थी परिवार ये सब रजोगुण का ही विस्तार है, रजोगुण में ही सारा संसार लिप्त है, इससे ऊपर उठाना ये मानव की मुख्य काम है। तो ये 3 गुण एक दूसरे से हमेशा कॉम्पिटिशन में होते हैं, ये दो गुणों को दबा के 1 गुण ऊपर बढ़ जाता है, और हर एक को रोज में इन 3 गुणों का प्रभाव, किसी समय में एक का ज्यादा होता है, कभी दूसरे का ज्यादा होता है, कभी तीसरे का ज्यादा होता है, ये रोज का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। इसलिए जब हम सुनेंगे समझेंगे तो कम से कम किसी वक्त विचार आएगा कि नहीं, अब तमोगुण को छोड़ना चाहिए। पता लगेगा तमोगुण है क्या, तब तो छोड़ने की बात करेंगे। पता लगेगा ये रजोगुण है तो कहेंगे ठीक है, इसको थोड़ा विराम देना चाहिए, थोड़ा सतोगुण में भी स्थित होना चाहिए, कुछ समय सतोगुण के लिए निकालना चाहिए। अब रोज ये 8 बजता है तो नरेश कहते चलो अब सत्संग का टाइम हो गया, तो कम से कम ये टाइम दिमाग में हमारे कि यहाँ सतोगुण का हमारा इतना 1 घंटा फिक्स है, इसमें बैठना है, तो ये एक विचार वैसे दिमाग में बना लिया। अगर ऐसे हम कुछ अपने नेम जीवन में बना लें, सतोगुण का व्यक्ति नेम से चलता है, उसका एक निर्धारित नेम होता है। अब इसके आगे के श्लोक में है, जब सतोगुण बढ़ता है तो क्या होता है, आप सतोगुण में होंगे तो क्या होगा, ये श्लोक है। सर्वद्वारेषु देहस्मिन् प्रकाश उपजायते। जब सतोगुण में कोई होता है ना, तो हमारे शरीर में 9 दरवाजे हैं, इस शरीर को 9 दरवाजों का नगर कहते हैं, 9 द्वारे पुरे देही, पुर कहते हैं नगर को, तो ये हमारा शरीर में 7 द्वार तो हमारे हैं मुख में, 2 आंखें, 2 नासिका, 2 कान और 1 मुख, ये 7 द्वार है ऊपर, 2 द्वार मलमूत्र त्यागने के, 7 द्वार। ये सारे सर्व द्वारेषु देहे अस्मिन् प्रकाश उपजायते, प्रकाश का मतलब ये सारे प्रकाश हो जाएगा का मतलब अंधकार से बच जाएंगे, अंधकार से बच जाएंगे मतलब गलत काम करने से बच जाएंगे, आंख गलत देखेगी नहीं, कान गलत सुनेगा नहीं, नासिका गलत, जैसे हम गलत को कैसे कहेंगे भाई, वो शराब की सुगंध को इच्छा नहीं होगी सूंघने की, और जीभा अभक्ष्य भोजन खाने की इच्छा नहीं करेगा, तो ये सारे इंद्रियां ये प्रकाश हो जाएगा, इनका मतलब ये इनको पता लग जाएगा कि ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए। किससे हो, कैसे, कहां से पता लगेगा? ज्ञानम यदा तदा विद्याद, उसको ये अब ज्ञान प्राप्त हो गया कि देखना क्या चाहिए, सुनना क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। तो सतोगुण जब बढ़ता है तो आंख अच्छा दृश्य देखना चाहती है कि मंदिर में चले जाएं, भगवान का दर्शन करें, भक्तों का दर्शन करें, अच्छा बहुत सुंदर प्रकृति का दृश्य देखने चले जाएं। और इसके विपरीत जब अज्ञानता रहती है तो आंख बुरा नज़ारा देखने, बुरी दृश्य दृष्टि डालने का विचार करता है। कान जब सतोगुण की तरफ ज्यादा बढ़ता है तो उसका मन करता है कि हरि कथा सुननी चाहिए, हरि कीर्तन सुनना चाहिए, और रजोगुण होगा तो दूसरे की बुराई सुनने की तरफ जाएगा। तमोगुण में होगा तो ऐसे बुरे से बुरे जो दुनिया में मारना लूटना ऐसा विचार बैठ के सुनने में अच्छा लगेगा, आज कहाँ डाका डालना है, आज किसको मारना है, ऐसी बात सुनने में अच्छा लगेगा। तो ये 9 द्वारे जितने हैं इन सब का प्रकाश हो जाएगा, इसका मतलब इनको पता लग जाएगा कि सही क्या है, गलत क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और ये कहाँ से हो गया? ज्ञानम यदा तदा विद्याद, ज्ञानम यदा तदा विद्याद, क्योंकि वो जानेगा उसको अब ये, क्योंकि सतोगुण में ज्ञान होता है तो ये सारे हमारी इंद्रियां, ये द्वार क्या है, इंद्रियां, आंख देखिए, ज्ञान इंद्रिय, ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 2 आंख ज्ञान इंद्रिय है, रूप का दर्शन करती है, देखने से पता लगता है, कान शब्द की ज्ञान इंद्रिय है, नाक सूंघने के लिए ज्ञान इंद्रिय है, जीभा चखने के लिए ज्ञान इंद्रिय है, तो ये 4 ज्ञान इंद्रियां, 5वीं चमड़ी है ज्ञान इंद्रिय छूने से, तो ये सब ज्ञान इंद्रियां हैं, और कर्म इंद्रियां हैं, ये सब पवित्र हो जाएंगी, ये सब शुद्ध हो जाएंगी, ये सब यहाँ शब्द लिखा है प्रकाश उपजायते, वो सब प्रकाशमान हो जाएंगी। अंधकार का मतलब अज्ञान, प्रकाश का मतलब ज्ञान। तो इन सब के अंदर खाना पीना उसके भी नेम, तो हर एक चीज नेम से होगी। ये सतोगुण बढ़ेगा तब ऐसा होगा, अब रजोगुण बढ़ेगा तब क्या होगा? लोभ प्रवृत्ति आरंभ, लोभ प्रवृत्ति आरंभ कर्मणाम अशम स्परा रजसे तानी जायन्ते विवर्दे भर्त्र शव। हे भरतवंशी में श्रेष्ठ, जब रजोगुण बढ़ता है, जब रजोगुण ही प्रभाव रूप विशेष रूप से किसी के अंदर बहुत बढ़ जाता है, वृद्धि हो जाती है रजोगुण की, तो क्या होता है? कर्मणा अशमः स्परा, अशमः का मतलब जिसके ऊपर कोई रोक नहीं डाली जा सके, अनकंट्रोलेबल, अनकंट्रोलेबल मतलब इच्छाओं को पूरी करने के लिए काम की दौड़ जो कभी कम ना होने वाली हो, जिसके ऊपर कोई प्रतिबंध न लगो, ये उसके मन में विचार आएगा। कर्मणा इसका मतलब काम करना, अशमा शम कहते हैं ब्राह्मण का लक्षण है, शम का मतलब अपने को बस में रखना, इंद्रियों को मन को बस में रखने को कहते हैं शम। अशम का मतलब अनकंट्रोल, किसी चीज के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं, जब आए जहां आए जैसे आए भागा, इस पर कहते हैं इच्छाओं को। इच्छाओं की पूर्ति के लिए बिना रोग के भागा दौड़ी में लगा रहेगा। क्यों? काय के लिए? लोभ, लोभ की प्रवृत्ति के कारण। प्रवृत्ति का मतलब कठा करना। लोभ, लोभ तो हमारा एक दोष है। लोभ का मतलब संग्रह करना, जिसकी आवश्यकता नहीं है उसको कठा करना। तो लोभ की प्रवृत्ति से आरंभ, शुरू से ही लोभ जिसमें होगा वो शुरू से ही भागा दौड़ी, मन कभी नियंत्रण में नहीं, इंद्रियां कभी नियंत्रण में नहीं, और वश में न मन है न इंद्रियां हैं, केवल भागा दौड़ी में लगा रहेगा, भागा दौड़ी में लगे रहेगा। न शांति है, न सुख है, न पवित्रता है, न ज्ञान है, बस भागो भागो भागो, लाओ लाओ लाओ, और लेकिन खाने का भी समय नहीं। तो रजोगुण बढ़ता था है तो असंख्य इच्छाएं कभी न पूरने पूरे करने वाली, उन्होंने वालों के लिए पागल की तरह भागा दौड़ी चालू रहती है, और इधर हाथ मारो उधर हाथ मारो, ये कर लो वो कर लो, ऐसा मन में विचार आता है। अब तमोगुण में क्या होता है? अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्य एतानि जायन्ते विवर्दे कुरु नंदन। हे अर्जुन, हे कुरु वंश के कुरु नंदन, जब तमोगुण बढ़ता है तो पहले अप्रकाशो अज्ञान अंधकार, प्रकाश वहां सतोगुण में क्या था? सब द्वारों में प्रकाश था, यहां सब द्वार अंधे, तो अंधकार होगा, अज्ञानता होगी, अप्रवृत्ति, और कुछ काम करने की इच्छा ही नहीं होगी, आलसी होगा बिल्कुल। रजोगुण में आलसी होता है, इसमें आलस खत्म। रजोगुण में होती है प्रवृत्ति और यहां होते है अप्रवृत्ति, सतोगुण में होता है ज्ञान, यहां होता है अज्ञान। तो सतोगुण के भी विपरीत है, रजोगुण के भी विपरीत है, प्रमाद मोह पागलपन और भ्रम में पड़ा होता है, अपने आप सब हो जाएगा, क्या करने की जरूरत है, तमस्य एतानि जायन्ते। ऐसा तमोगुण वाला, तमोगुण का व्यक्ति है वो आलसी प्रमादी पड़ा रहेगा, न तो कुछ करने के लिए विचार करेगा और न ही कुछ सही और गलत का उसको पता लगेगा। ये तमोगुण की प्रवृत्ति जब बढ़ जाती है तो ऐसा होता है। अब हमको ये देखना चाहिए कि ये सब हमारे जीवन में किस तरीके से हमारे ऊपर प्रभाव डालते हैं। इसके बाद है कि किस गुण के प्रभाव से जब शरीर छूटता है तो वो कहाँ जाता है, ये श्लोक तो बाद में करें, इसके कल देखेंगे, इसके आगे के विचार करेंगे। अब इन श्लोकों को जिनको हमने पढ़ा है, चार पांच श्लोकों को, इसको हम अपने जीवन में देखें कि हमको पहले तो सतोगुण के लिए ज़्यादा समय सतोगुण में रहें ये विचार करना चाहिए, क्योंकि सतोगुण में जो रहता है वो बुद्धिमान होता है, वो विद्वान होता है और वो समझदार होता है, उसको वो पाप से बच जाता है, पाप से बचने का प्रयास करता है, ये सतोगुण की पहचान है। तो अब सतोगुण के जो गुण हैं वो अपने अंदर लाने का अभ्यास कैसे किया जाए, ये हमारा पहला, क्योंकि तमोगुण के लिए कुछ अभ्यास करने की जरूरत नहीं है, वो तो वैसे ही दुनिया अज्ञान की है। इस दुनिया में हम आए ही, देखो बच्चा आता है सोया ही रहता है, छोटा बच्चा जन्म लेता है तो कितने 18 घंटे सोया होता है, तो सोना या अंधकार तो इस दुनिया में है ही, और क्या करेगा बच्चा छोटा, क्या करेगा, जो कुछ होगा वो मुंह में डालेगा, वो अपने अलावा और किसी को देना नहीं चाहता है। ये तमो और रजोगुण आपको देखना है तो बच्चे में देखे, और पशुओं में, पशु रजोगुण में, तमोगुण पशुओं में है, जो है मेरे को ही मिले और किसी को नहीं मिले। देखो आप रोटी बाहर फेंको तो कुत्ते आएंगे एक दूसरे के ऊपर भौंकते हैं कि नहीं भौंकते, एक टुकड़े के ऊपर आपस में लड़के लड़ मरते हैं। तो ये तमोगुण जो जन्म से, तो तमोगुण की प्रवृत्ति है, देख लो बच्चों को सोए होते हैं, कुछ भी दो तो वो एक ही पकड़ेगा, और किसी को, खिलौना तो मेरे को दो, खाना तो मेरे को दो, किसी को मत दो। थोड़ा बड़ा होता है तब उसको सिखाया जाता है बांट के खाओ, एक दूसरे को दे के खाओ, तो उसको बाद में सिखाया जाता है कि अब ये सबके लिए, तुम्हारे अकेले के लिए नहीं है। तो मानव जो है समाज के अंदर तमोगुण से पहले बचे, तमोगुण से बचने के लिए सोचना हमको ये चाहिए कि हमारा जीवन नेम से कैसे चले। सोने का कोई टाइम फिक्स करना चाहिए, उठने का टाइम फिक्स होना चाहिए, खाने का टाइम फिक्स होना चाहिए, नहाने का टाइम फिक्स होना चाहिए, ये सब चीजें जीवन में निर्धारित करनी चाहिए। जैसे आए वैसे चले, ये तमोगुण है। जैसे आए वैसे चले, वो तमोगुण है। जैसे मन में आए वैसे करे, ये भी तमोगुण है। जो शास्त्र के नियम से चलता है वो सतोगुण है। पहले तो शास्त्र का नियम है, उसको अच्छी तरह से पालन करने का प्रयास करना चाहिए। सबसे सतोगुण में स्थित होने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है सुबह सवेले ब्रह्म मुहूर्त में उठना। ये सबसे बड़ा सतोगुण की पहली आवश्यकता है सतोगुण में स्थित होने की, कि सवेले उठना और स्नान करना और सुमरण करना। सवेल उठना, स्नान करना और सुमरण करना, ये सतोगुण की नीम है। ये अगर नीम ही कच्ची है तो बिल्डिंग ऊपर खड़ी हो नहीं पाएगी। इस नीम को कैसे पक्का किया जाए, इसके लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि आधुनिक जो इस वक्त भौतिक सभ्यता है उसके अंदर रात को देर तक जागने की एक बीमारी ऐसी आ गई है जिससे बचना बहुत मुश्किल हो गया। बहुत भारी बीमारी है असल में। हम डॉक्टरी की दृष्टिकोण से जब देखते हैं कि रात को 10:30-11 के बाद नींद में नहीं सोने वाले के शरीर के अंदर जो कुदरत का कानून है सफाई करने का, वो काम नहीं करना, वो 11 बजे शुरू करता है। हम 10 बजे सो जाएंगे, 11 बजे हमारा जिगर साफ होना शुरू होता है। जो सारे हमारे शरीर की बड़े से बड़ी जो है वो कारखाना है, फैक्ट्री है, उसमें सारे दिन के काम का जो खर्चा हुआ है उसको सारे को साफ करके रिपेयर करते हैं, वो चलता है 3 घंटे। ये समझो तो 10 से 1 बजे तक उसका टाइम है। अब जहाँ तक नहीं सोएंगे तो इसका मतलब फिर लिवर के साफ करने का समय समाप्त हो गया। भाई जवानी में तो चल जाता है, लेकिन आगे चल के ये बहुत बड़ा दुख और रोग का कारण बनता है। कैसे भी प्रयास करके ज्यादा से ज्यादा 10:30-11 तक सोना चाहिए, और सोने और खाने के बीच में 2.5 से 3 घंटे का गैप होना चाहिए। रात को सोने और खाने के बीच में 2 से 2.5 से ज्यादा समय का गैप होना चाहिए। लेकिन ऐसी हम अपने आप देख रहे हैं, ऐसी स्थिति है पूरे विश्व की। समझदार लोग हैं, एक उदाहरण आया था कि ब्रिटिश यहाँ आया था, अभी तक मुगलों का राज था। नौजवान ब्रिटिश का सिपाही सवेले 3 बजे उठ के ड्रिल करना चला जाता था, एक्सरसाइज करना शुरू करता था सुबह 3 बजे उठ के, और मुगलों का शहनशाह रात को 3 बजे गाना बजाना सुन के सोने जाता था। जब अंग्रेज उठता था उस वक्त मुगल सोने जाता था, और मुगल 11 बजे उठता था, वो इंतजार करता था कोई आएगा, हमारा मुंह धुलाएगा, पानी लाएगा, कुल्ला करेगा, फिर चाय नाश्ता करेंगे, तो वो उनका राज, इतना बड़ा साम्राज्य था पूरे देश के ऊपर, समाप्त हो गया। और जो जागते थे सुबह वो यहाँ के राजा बन गए। ये उदाहरण एक आया था कि जे आज भी पाश्चात्य देशों में हमने देखा है कि लोग समय पे सोने का नियम पक्का है और सुबह सवेल उठने का। हम छोटे माया मॉरिशस द्वीप में जाते हैं, लोग सुबह 5 बजे तक उठ जाते हैं, 7 बजे तक काम पे चले जाते हैं, 7 बजे तक काम पे जाते हैं। दुबई में देखते हैं 7 बजे से पहले काम पे जाना ही है, वो 7:30 कर नहीं सकते, 7 बजे काम के लिए निकल जाते हैं घर से, और शाम को 7 बजे तक आके भोजन कर लेते हैं। वहाँ सत्संग भी कभी होता है तो पहले आके भोजन करते हैं 6:30 बजे, फिर आधा घंटा सत्संग सुनते हैं, 1 घंटा, फिर घर जाते हैं। पहले प्रसाद, फिर भोजन होता है, फिर होता है वहाँ कथा। लेकिन हमारे यहाँ कैसा कुछ स्थिति है कुछ जगहों पे, या हम कभी सिंध में जाते हैं तो रात को 12 बजे सत्संग में आते हैं, 11 बजे के बाद सत्संग में आते हैं, 11:30 बजे सत्संग शुरू होगा, 1 बजे खत्म होगा, 2 बजे भंडारा होगा, 3 बजे जाएंगे। अब बताओ, हम थाईलैंड में गए, वो दुकान के अंदर सत्संग करते हैं, दुकान 1 बजे बंद होता है, उसके बाद सत्संग शुरू होता है, 3 बजे जाते हैं। हमने कहा भाई सुबह दुकान पे कितने बजे आते हो, बोले 11 बजे, 12 बजे जाते हैं। तो बोले फिर तो आप सुबह ऐसे करो 9 से 10 बजे सत्संग सुन लो, नाश्ता भी यहाँ खा लो, फिर चले जाओ दुकान पे। अब रात को सबको जगाने की क्या जरूरत है, तो कुछ ऐसे ये सब रजोगुण का प्रभाव है। समय का ध्यान ठीक नहीं देना ये रजोगुण का प्रभाव है। ये ज्यादा समय चलता नहीं है, ये अंत में दुख देता है और परेशानी बढ़ाता है। इसलिए सात्विक जीवन और तामसमस, कभी कभी हम ऐसे पड़े होते हैं आलसी की तरह, समझते हैं कि हम बहुत बड़े सतोगुण में, लेकिन वो है तमोगुण। इसलिए सतोगुण में ज्यादा कैसे आया जाए इसका प्रयास करना चाहिए। उसके लिए अच्छे संग की जरूरत है। अच्छा संग होगा भाई, मानो हम यहाँ ऐसे अपना निर्णय बना लें कि सुबह भाई हम 5 से 6 बजे तक बैठ के भगवान का नाम जप करेंगे, तो हम 5 आदमी संग बना देंगे, तो आस्ते आस्ते आदत पड़ जाएगी। और रात को 9 बजे एक एक हमारे हमें मार्केट हमारी दुकान हमारे, हम अगर कहें कि हमें 8 बजे बंद करना है तो कौन मना करेगा, हम कर सकते हैं ना। लेकिन रजोगुण ऐसा है, लोभ ऐसा है कि वो बैठा है मैं क्यों नहीं चला जाऊं, तो सभी फैसला कर दो कि भाई बंद करना है। आखिर आपने बंद किया है ना, कहीं मंगल बंद किया है, कभी सोमवार को बंद किया है, तो 7 बजे बंद करना है। जिसको आना होगा दूसरे दिन अपने आप आ जाएगा। लेकिन भगवान के ऊपर भरोसा करके कुछ अपने जीवन का भी तो नियम बनाना चाहिए ना। अब पहले हम कह रहे थे आज नहीं जाएंगे तो काम नहीं होगा, लेकिन अब 15 दिन के 3 हफ्ते से घर बैठे हैं तो अभी दुनिया चल रही है कि नहीं चल रही है, खा रहे हैं, बैठ रहे हैं, सो रहे हैं, सब कुछ कर ही रहे हैं ना। तो ये 21 दिन में बैठ के सोचो कि सचपच हमको किस तरीके से अपना जीना चाहिए, जीवन कैसे जीना चाहिए, सतोगुण में कैसे स्थित होना चाहिए। फिर सतोगुण से भी ऊपर उठना है तब भगवान को समझ सकते हैं। सतोगुण भी ज्ञान की प्रवृत्ति वाला है, उससे भी ऊपर उठना पड़ेगा तब असल में भगवान के निकट पहुंचेंगे। शुद्ध सतोगुण में पहुंचना तो ऊपर की बात है, पहले सतोगुण में आने का प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्ण, धन्यवाद। ये